તારીખ 31/1/1993 શ્રી મોક્ષ માર્ગ પ્રકાશક ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન. સળંગ પ્રવચન નંબર 10.
વિશેષ કરીને માન્ય કરવા યોગ્ય છે, પ્રમાણનો અર્થ થાય છે. વિશેષ કરીને માન્ય કરવા યોગ્ય છે અને પૂર્વ આચાર્યો રચિત જે આગમ છે એની પરંપરા અનુસાર આ ગ્રંથનું કથન કરવામાં આવ્યું છે. એ પરંપરા કેવી રીતે જાળવવામાં આવે છે ગ્રંથ કરતા પોતે એ વિષયમાં સ્પષ્ટીકરણ આપે છે. પ્રશ્ન છે ક્યાંથી લેવાનું છે, પેરેગ્રાફ પૂરો થાય છે. ઉન પદો કી પરંપરા ઇસ ગ્રંથ પર્યંત કિસ પ્રકાર પ્રવર્તમાન હૈ, જો ઇસ ગ્રંથ મે જો પદ રચના હૈ, પદ મેને શબ્દ વાક્ય વચન, ઉસકી પરંપરા આગે કે પૂર્વ કે આગમ કે અનુસાર કેસે ઇસ ગ્રંથ પર્યંત પ્રવર્તમાન હુઈ, કેસે હુઈ, ઉસકા ઉત્તર દેતે હૈ કે અનાદિ સે તીર્થંકર કેવલી હોતે આયે હૈ, ઉનકે સર્વ કા જ્ઞાન, ઉનકો સર્વ કા જ્ઞાન હોતા હૈ, ઇસલીએ ઉન પદો કા તથા ઉનકે અર્થો કા ભી જ્ઞાન ઉનકો હોતા હૈ. પુનશ્ચ ઉન તીર્થંકર કેવલિયો કા દિવ્ય ધ્વનિ દ્વારા એસા ઉપદેશ હોતા હૈ કે જિસે અન્ય જીવો કો પદો કા એવં અર્થો કા જ્ઞાન હોતા હૈ, ઓર ઉસકે અનુસાર ગણધર દેવ અંગ પ્રકરણ રૂપ ગ્રંથ ગૂંજતે હૈ, તથા ઉનકે અનુસાર અન્ય અન્ય આચાર્યાદિક ભી અનેક પ્રકાર કે નાના પ્રકાર કે ગ્રંથાદિ કી રચના કરતે હૈ. इनका कोई अभ्यास करते हैं, कोई उनको कहते हैं, कोई उनको सुनते हैं. इस प्रकार परंपरा मार्ग चला आता है, चला जाता है. यहाँ तक कल पढ़ा था आपने. हिंदी में नहीं समझे? हिंदी में समझा से आपने? हिंदी में समझ में आएगा. ठीक બેન જી નહીં સમજતી ને? હા, ક્યા કહેતે હૈ કે તીર્થંકર દેવ સે જો ઉપદેશ ચલા આયા હૈ, તો ગણધર દેવ ને ઉસકી ગ્રંથ રચના કી, ફિર આચાર્યો ને અનેક આચાર્યો ને ભી ઇસ બાત કો અપને ગ્રંથ મેં રખી, और उसको पढ़ते सुनते अभ्यास करते करते ये जो तीर्थंकर देव का उपदेश है उनकी परंपरा अब भी मौजूद रही है. अब इस भरत क्षेत्र में वर्तमान अवसर्पिणी काल है. कैसा है? अवसर्पिणी काल मैंने उतरता काल. सर्प है वो एक अंग में पीछे पूछ में जो है बहुत पतला होता है और मुंह तक जैसे आगे बढ़ो ऐसे मोटा मोटा होता है. तो अवसर पे मैंने उतरता काल है. मैंने जितना काल आगे प्रवर्तमान होगा उस सब काल में हीन परिणाम वाले जीव अधिक अधिक उत्पन्न होते रहेंगे. उत्कृष्ट परिणाम वाले जीव कम होंगे, अच्छे परिणाम वाले जीव कम होंगे और नीचे परिणाम वाले जीव, हल्के परिणाम वाले जीव ज्यादा होते रहेंगे. ऐसा ये काल है. ये भगवान के सर्वज्ञ के केवल ज्ञान में आई हुई बात है और अपने को भी उसकी प्रतीति आती है. आगम में वो बात आई है और वर्तमान काल देखते हुए अपने को भी इसकी प्रतीति आई है. 10 साल पहले, 100 साल पहले जैसा जमाना था ऐसा जमाना अब नहीं रहा है, ये बात तो साफ है। अब इस व्रत क्षेत्र में वर्तमान अवसर पीणी काल है, मैंने महाविदेह में नहीं है, ऐसा काल महाविदेह में नहीं है, ये व्रत क्षेत्र में है। इसमें 24 तीर्थंकर हुए, इस व्रत क्षेत्र में 24 तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान से लेकर महावीर भगवान पर्यंत 24 तीर्थंकर हुए, जिनमें श्री वर्धमान नामक अंतिम तीर्थंकर देव हुए, 24 में जो थे उनको वर्धमान कहते हैं और उनको महावीर भगवान भी कहते हैं और उनको सम्मति भगवान भी कहते हैं, दो तीन नाम से पुकारते हैं। उन्होंने केवल ज्ञान विराजमान होकर जीवों को दिव्य ध्वनि द्वारा उपदेश दिया। जब केवल ज्ञान उनको प्रकट हुआ तो उन्होंने 42 साल की उम्र में केवल ज्ञान प्रकट किया, 30 साल की उम्र में दीक्षा लिया था, 12 साल जंगल में रहे तपस्या किया और श्रेणी चढ़ करके 42 साल की उम्र में केवल ज्ञान को प्रकट किया और 30 साल तक वो उपदेश समोसरण में देते रहे। उसको सुनने का निमित्त पाकर गौतम नामक गणधर ने अगम्य अर्थों का भी जानकर धर्मानुरागवश अंग प्रकरणकों की रचना की। देखो एक एक शब्द कैसा है, लिखते हैं कि वो भगवान महावीर की वर्धमान स्वामी की दिव्य ध्वनि को सुनने का निमित्त पाकर, वो तो निमित्त था, उपादान अपना था गौतम स्वामी को, वाणी का निमित्त पाकर गौतम नाम के इनके जो प्रमुख गणधर थे, 11 गणधर थे भगवान को, ऐसे अनेक गणधर होते हैं अलग अलग तीर्थंकर को, महावीर स्वामी को 11 गणधर थे, उसमें गौतम स्वामी है वो प्रधान गणधर थे। उन्होंने अगम्य अर्थों को भी जान लिया भगवान की दिव्य ध्वनि सुन करके, बहुत अगम्य, साधारण प्राणी को गम्य नहीं होवे ऐसे अगम्य अर्थों को भी जान लिया और धर्मानुरागवश अंग प्रकरणों की रचना की। मैंने भावी में अनेक जीवों को धर्म लाभ होता रहे, धर्म की प्राप्ति होती रहे, ऐसा एक अनुराग का अंश गौतम स्वामी को भी हुआ और गणधरों को ऐसा होता ही है। जो भगवान के गणधर होते हैं उनको शासन चलाने का अनुराग आए बिना नहीं रहता, तो अनुराग वस्तु 12 अंग की रचना करते हैं। फिर वर्धमान स्वामी तो मुक्त हुए, वर्धमान स्वामी तो भी सिद्धालय में उनकी आत्मा विराजमान है। वहां पीछे इस पंचम काल में 3 केवली हुए, उनके बाद क्या हुआ, भगवान जब पधारे तो चतुर्थ काल के कुछ करीब 2.5 महीना बाकी था, कितने 2.5 महीना करीब बाकी था, पंचम चतुर्थ काल पूरे होने की तैयारी थी, भगवान सिद्धालय में निर्वाण पद में चले गए पधारे। उसके बाद गौतम स्वामी, सुधर्माचार्य और जम्बू स्वामी, ऐसे 3 केवली हुए हैं। फिर तो केवल ज्ञान तो पंचम काल में बिछेद जाता है, लेकिन ये चतुर्थ काल में जन्मे हुए थे इसलिए उनको पंचम काल का बाद नहीं आया, तो पीछे से 3 केवली हुए हैं। तीन जीवों को केवल ज्ञान हुआ। तत्पश्चात काल दोष से केवल ज्ञानी का तो अभाव हुआ, फिर क्या हुआ, केवल ज्ञानी नहीं रहे, केवल ज्ञानी कोई हो नहीं सके, ऐसा हुआ। परंतु कुछ काल तक द्वादशांग के पाठे सूत केवली रहे, कुछ काल तक 12 अंग का जानने वाले ऐसे श्रुत, पूरा श्रुत जिसको ज्ञान हो, 12 अंग का जिसको ज्ञान हो उसको श्रुत केवली कहते हैं। श्रुत केवली का 3 प्रकार का अर्थ है। श्रुत केवली शब्द का अर्थ 3 प्रकार का है। 12 अंग का जिसको ज्ञान है उसको श्रुत केवली कहते। केवल मैंने पूर्ण, जैसे केवल ज्ञान मैंने पूर्ण ज्ञान, ऐसे केवल श्रुत मैंने पूर्ण श्रुत। तो 12 अंग का जिसको ज्ञान है उसको श्रुत केवली कहते हैं और सम्यक दृष्टि को भी श्रुत केवली कहते हैं। आया समय सार 9-10 गाथा में अपने चला गया। और प्रत्यक्ष तीर्थंकर केवली की देशना को सुन के जो आया हो उसको भी श्रुत केवली कहते हैं। श्रुत शब्द है वो भूत कृदंत होता है। क्या भूत कृदंत? जैसे कोई परदेश जाके आते हैं तो क्या कहते हैं कि फॉरेन रिटर्न। क्या फॉरेन रिटर्न है वो? ऐसे वो वहां से सुन करके आए भगवान के, जैसे कुंदाचार्य, तो वो श्रुत केवली थे क्योंकि सुमंदर भगवान को सुन के आए थे। तो श्रुत मैंने सुना हुआ भूत कृदंत हो गया। व्याकरण के हिसाब से भूत कृदंत उसको कहते हैं। तो श्रुत मैंने सुना हुआ, केवली से सुना हुआ है। ऐसा एक आदमी है कि जो केवली से सुनकर आया उसको भी श्रुत केवली कहने में आता है। ऐसा श्रुत केवली का प्रकरण वश 3 प्रकार शब्द का अर्थ होता है। यहाँ पूरा 12 अंग का को जो पाठी है उसको श्रुत केवली कहते हैं। तो कुछ काल तक तो द्वादश अंग के पाठी श्रुत केवली है और फिर उनका भी अभाव हुआ। फिर 12 अंग का ज्ञान वाले भी नहीं रहे आगे जा करके। फिर कुछ काल तक थोड़े अंगों के पाठी रहे, कोई 11 अंग के, कोई 10 अंग के, कोई 5 अंग के, 2 अंग के, 1 अंग के, ऐसे ऐसे ज्ञान धराने वाले रहे। भावी में जाए, भावी में जाए, 12 या पण तो चौथा काल में गया नहीं, प्रणज गया, बाकी 12 वाला रहा, चौथे काल में नहीं गए वो। तो उसके वो तो सम्यक दृष्टि, वो भावी में जाने वाले ही है, उसको सम्यक दर्शन हुआ। तो 12 वाले नहीं जाएंगे वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये तो मुनि है, महामुनि है, भावलिंगी संत है, वो तो भावी में जाएंगे, अवश्य जाएंगे वो। मैं उसको नहीं, ये तो अभी चतुर्थ आ रहा है, चौथा आ रहा है, कैसे पंचम आ रहा है, कैसे जाएंगे? इतनी योग्यता नहीं होती पुरुषार्थ की, उतनी योग्यता कोई काल रोकता नहीं है, लेकिन पुरुषार्थ की ऐसी तीव्र योग्यता वाले जीव यहाँ जन्म लेते हैं नहीं। इस भाव में जाने वाले वो महावीर क्षेत्र में जन्म लेते, इधर नहीं जन्म लेते। इधर तो जिसका भाव बाकी हो वे जन्म लेते हैं। फिर कुछ काल तक थोड़े अंगों के पाठी रहे, पीछे उनका भी अभाव हुआ, फिर कोई अंगधारी नहीं रहे, एक अंगधारी भी नहीं रहे, इसका अंश रहा, फिर इसका भी अंश रहा। तब आचार्य भी, आचार्य आदि को द्वारा उनके अनुसार बनाए गए ग्रंथ तथा अनुसारी ग्रंथों के अनुसार बनाए गए ग्रंथ ही उनकी प्रवृत्ति रही। तो फिर क्या हुआ कि जो अंगधारी थे, मुनि आचार्य थे, उनको सुन करके फिर उसके अनुसार दूसरे आचार्यों ने ग्रंथ बनाए, फिर उनके अनुसार दूसरे आचार्यों ने, मुनियों ने ग्रंथ बनाए, ग्रंथ अनुसारी ग्रंथ बने। फिर ऐसे ग्रंथ की प्रवृत्ति रही। उनमें भी काल दोष से दुष्टों द्वारा कितने ही ग्रंथों की विच्छुति हुई। उसमें भी ऐसे ऐसे मनुष्य हुए जिन्होंने सत्शास्त्र का नाश कर दिया, दुष्ट परिणाम हुए। तो उनको दुष्ट कहते हैं, जिसके परिणाम दुष्ट होते हैं उनको दुष्ट कहते हैं। तो ऐसे दुष्ट मनुष्यों से द्वारा ग्रंथों की विस्तृति हुई, ग्रंथों का नाश हुआ तथा महान ग्रंथों का अभ्यास आदि न होने से विस्तृति हुई, और ऐसे कोई महान ग्रंथ नहीं रहे तो इनकी विस्तृति, इनके ज्ञान की भी विस्तृति में नाश हुआ। व्यवच्छेद, व्यवच्छेद की क्रिया को विस्तृति कहते हैं, ज्ञान की क्रिया को उन्नति कहते हैं, परिणाम की क्रिया को परिणति कहते हैं, ऐसे व्यवच्छेद की क्रिया को विस्तृति कहते हैं। तथा कितने ही महान ग्रंथ पाए जाते हैं, उनका बुद्धि की मंदता के कारण अभ्यास होता नहीं, और कितने महान ग्रंथ विद्यमान हैं, फिर भी लोगों की अभी इतनी बुद्धि नहीं रही, बुद्धि बहुत मंद बुद्धि वाले जीव इधर जन्म पाते हैं, तो उनको ग्रंथ होते हुए भी उसका अभ्यास नहीं हो सकता। किसी को तो भाषा नहीं आती
है,
ये बुद्धि उसमें काम नहीं लगे। एटम बम बनाने की, मिसाइल बनाने की, एरोप्लेन बनाने की, कंप्यूटर बनाने की, रोबोट बनाने की, ये बुद्धि इसमें काम नहीं आती। भौतिक सूक्ष्म अलग होता है, आध्यात्मिक सूक्ष्म अलग जाति का होता है, उसकी जाति ही अलग है। है तो ज्ञान, लेकिन जाति अलग है, उसकी एक जाति नहीं है, अलग अलग जाति के ज्ञान है। ये तो अनुभव ज्ञान है, कुछ प्रैक्टिस के बाद प्राप्त होता है, सीधा प्राप्त नहीं होता। जैसे 10 साल की बच्ची घर में रोटी बनाएगी और 75 साल का आदमी उसका ग्रैंडफादर होगा तो रोटी नहीं बना सकता, क्यों? बुद्धि नहीं है उसमें क्या रोटी बनाने की, उसको खबर नहीं है कि कैसे रोटी बनती है, खबर है क्या करे, बनाना दूसरी बात है, खबर होना दूसरी बात है। खबर होना उसका नाम ज्ञान नहीं, उसका नाम ज्ञान नहीं है। तो कुछ ज्ञान ऐसे हैं कि जो प्रैक्टिस बिना उपलब्ध होता ही नहीं, बिना प्रैक्टिस उसकी प्राप्ति होती नहीं। कितने ही महान ग्रंथ पाए जाते हैं, मैंने अभी विद्यमान है, उनको बुद्धि की मंदता के कारण अभ्यास होता नहीं। देखो एक बात याद आया, वो जर्मन लोग इधर आए थे शुरू शुरू में, हिटलर आया उस वक्त, जर्मन लोग हिंदुस्तान में आए, उन्होंने बहुत ग्रंथ ले गए थे, उसके पहले एटम बम बनाने के पहले तो बहुत ग्रंथ ले गए थे यहाँ से। तो जब उन्होंने देखा कि इधर जो जैन ग्रंथ है उसमें ऐसी बातें पड़ी है कि ये कोई हमारा दिमाग काम करता नहीं है, इंटेलेक्चुअल जायंट्स कहते थे कि बनाने वाले कैसे होंगे, कितने बुद्धिमान होंगे, कि जायंट, बुद्धि के जायंट होंगे बड़े, ऐसा कहते थे उन लोग, क्योंकि उनकी बुद्धि तो बहुत थी उन लोगों की, लेकिन उसमें है उसकी बुद्धि काम नहीं करते थे। आज भी हजारों ग्रंथ वो ले गए हैं और ले जाते भी है, है? हाँ, बहुत अभ्यास है लोगों, मागधी संस्कृत ना विद्वान है, जर्मन लोग भी मागधी संस्कृत के विद्वान है आज भी, और संस्कृत की डॉक्टरेट की डिग्री तो आज भी जर्मनी में मिलती है, भारत में नहीं मिलती, बनारस में नहीं मिलती है। ऐसी बात है, वो लोग ने काफी मेहनत किया है, हाँ डिग्री मैंने इतने वो लोग आगे बढ़े हैं, बहुत मेहनत बहुत करते हैं, अपने लोग उतना मेहनत नहीं करते, अपने शास्त्र लेने को अभी भी वो लोग इधर आते हैं, चार चार छः छः महीना भारत में रहते हैं, शास्त्र का अभ्यास करते हैं, कुछ शास्त्र खरीद करके ले जाते हैं। हमारे शास्त्र वहाँ पड़े हैं, हमारे विद्वान लोग वहाँ अभ्यास करने को नहीं जाते, और कौन से शास्त्र ले गए इनका किसी को पता नहीं है पूरा। थोड़ा अपन लोगों ने कोशिश किया था तो वो जो लाइब्रेरी में है बर्लिन की सेंट्रल लाइब्रेरी, जर्मनी का कैपिटल सिटी है बर्लिन, बर्लिन की सेंट्रल लाइब्रेरी और मॉस्को की सेंट्रल लाइब्रेरी, क्योंकि वो ले लिया था ना रशियन लोगों ने ले लिया था, वहाँ करीब 1200 ग्रंथ से अधिक ग्रंथ, दिगंबर और श्वेतांबर दोनों संप्रदाय के ग्रंथ वहाँ आज भी मौजूद है। उसका एक कैटलॉग आया था अपने पास, अभी भी है अपने पास कैटलॉग, करीब 200 रुपया कैटलॉग का लगा था, 225 रुपया रिजर्व बैंक थ्रू मंगाया था, और उसका जो जर्मन कॉन्सुलेट ऑफ जनरल अफेयर्स है उनके थ्रू मंगाया था, उनसे बात किया था। पुराने सब हैं, पुराने ग्रंथ हैं, बहुत पुराने, समय सारा भी है सब वहाँ, समय सार, प्रवचन सार, नियम सार, अष्टपाहुर, पंचाशती का सब है वहाँ, गोमट सार, धवल सब है वहाँ, सब लेके जितने अपने हैं है? स्वस्तिक रहा, हाँ जर्मन भाषा में बहुत संस्कृत शब्द है, वो पानी को नीर कहते हैं, जैसे पानी को नीर कहते, संस्कृत में निरम कहते हैं, निरम पानी, वो लोग नीर कहते हैं, बहुत मिलते जुलते शब्द है। ये रिसर्च माइंडेड पीपल हैं सब, जर्मन लोग हैं, सारे विश्व में एक वही देश ऐसा है कि वो बहुत रिसर्च के पीछे है, संशोधन के पीछे बहुत लगते हैं वो लोग। उन्होंने भी कार्ल गोस द्वारा महान ग्रंथ पाए होते भी बुद्धिमंदता के कारण अभ्यास नहीं होता, जैसे कि दक्षिण में गोमत स्वामी के निकट मुड़बिद्री नगर में धवल, महाधवल, जय धवल पाए जाते हैं, परंतु दर्शन मात्र ही है, मुड़बिद्र में आज भी है, ताड़ पत्र पर लिखा हुआ ग्रंथ का दर्शन कराते हैं, मूल ग्रंथ है वहां, लेकिन कोई पढ़ने वाले वहां नहीं है। आज तो उसका प्रिंटिंग हो गया, बहुत साल तक तो प्रिंट नहीं कराने दिया कि नहीं असाधना हो जाएगी, ये तो महान फ्रूट है अपना, सिर्फ दर्शन करने का, महान फ्रूट का क्या करना, दर्शन करने, पढ़ने का नहीं मिले, पढ़े तो खराब हो जाए, तब दूसरा नकल मिले नहीं, खराब हो जाए तो क्या हो, नाश हो जाए, तो उसको रख लेते तिजोरी में रख लेते हैं। अभी फिर कुछ विद्वानों ने कोशिश किया कि भाई ऐसा तो कहाँ तक तुम रखोगे, उसका नकल होगा तो वो ऐसी परंपरा चालू रहेगी, वरना परंपरा छूट जाएगी। तो फिर ये एन उपाध्याय और दो तीन विद्वानों, फुलचंद जी वगैरह दो तीन विद्वानों ने मिलकर के उनके छपवाए, आज वो मिलते हैं सब, वैसे कि दक्षिण में, लेकिन ये टोडरमल जी के साहब के टाइम में वो मिलते नहीं थे, लेकिन वो बात प्रसिद्ध थी कि मुड़बिद्री में बहुत ग्रंथ है, गोमट सार है, जय धवल, जय धवल, महाधवल आदि सब ग्रंथ वहां है, परंतु दर्शन मात्र ही है, जो उसको इतना कमेंट किया है, तो पढ़ने को नहीं मिलता, दर्शन करने को मिलता है, पढ़ने को नहीं मिलता है। तथा कितने ही ग्रंथ अपनी बुद्धि द्वारा अभ्यास करने योग्य पाए जाते हैं, उनमें भी कुछ ग्रंथों का ही अभ्यास बनता है, सबका अभ्यास नहीं बनता। ऐसे इस निकृष्ट काल में उत्कृष्ट जैन मत का घटना तो हुआ, क्या जैन मत उत्कृष्ट है, काल निकृष्ट है, तो उसका घटना तो हुआ, परंतु इस परंपरा द्वारा अब भी जैन शास्त्रों में सत्य अर्थ का प्रकाशन करने वाले पदों का सद्भाव प्रवर्तमान है। तो बात तो कम हो गई है, परंतु बिल्कुल नाश नहीं हुआ है, उसकी परंपरा अब भी चालू है, और अब भी जैन शास्त्रों में सत्य अर्थ का प्रकाशन करने वाले वचन पाए जाते हैं। अब थोड़ी बात रह गई है, वो बात अच्छी है, और वर्तमान जीवों का भी ये सौभाग्य है कि मोक्ष मार्ग को वो प्राप्त कर सकते हैं, ऐसी बात है। टोडरमल जी भी ने भी काफी भी परिश्रम किया था, वो कहीं आदमी को भेजे थे उस वक्त तो रेलवे नहीं थी, कई आदमी को भेजे थे, 200 साल हो गया, रेलवे नहीं थी। वे रेलवे की शताब्दी तो अभी गई, कुछ साल पहले 100 साल पूरा हुआ, ये तो 200 साल की बात है। तो जिसमें भी जैसे घोड़े पे जाते हैं, ऊंट पे जाते हैं, ऐसे जो भी है, वो आदमी भेजे थे दक्षिण में, और दक्षिण में से कुछ शास्त्र वो ले आए, मंगाए आदमी को भेज करके, और उनकी भाषा नहीं जाने, दक्षिण की भाषा, सारे हिंदुस्तान में एक दक्षिण की चार भाषा ऐसी है कि कोई समझ में ही नहीं आवे, एक अक्षर भी समझ में नहीं आवे, क्या बिल्कुल मिलती जुलती नहीं है अपने से। वो कहते हैं कि ये मूल भारत की भाषा वो है, वैसा वो कहते हैं। हाँ, द्राविड़ भाषा, द्राविड़, द्राविड़ लोग थे वो, कन्नड़ द्राविड़ वो सब मूल भाषा कहते हैं वो लोग। ये कि ये हिंदी गुजराती सब पीछे से हुआ, इसलिए वो हिंदी को नफरत करते ना, हिंदी को बहुत नफरत करते हैं, प्रेजुडाइज है। ये मूल भाषा, मूल संस्कृति तो हमारे यहाँ है, ऐसा कहते हैं। और टोडरमल जी इतने बुद्धिमान थे, उतने बुद्धिमान थे कि उस भाषा को वो उसका उकेल करके पढ़ते थे वो ग्रंथ। आज अपन एक शब्द भी नहीं समझ सके, वो टोडरमल जी ने उसका भी उकेल किया था, उतने बुद्धिमान थे वो, कन्नड़ वगैरह भाषा को पढ़ करके फिर उसमें से भी अर्थ निकालते थे, इसलिए वो ग्रंथ मंगाए उन्होंने। कैसे सीखे होंगे, कैसे ये ज्ञान हुआ होगा, एक आश्चर्य की बात है। अब ग्रंथकार कहते हैं कि मेरा आगम अभ्यास कितना है, जब मैं ये ग्रंथ बनाता हूं तो मेरी ये ग्रंथ बनाने की योग्यता है या नहीं है, ये भी मैं मेरा बयान दे दूं, मेरी बात भी मैं कर लूं, ताकि आपको पढ़ते वक्त विश्वास होवे कि लिखने वाला कोई प्रमाणिक है, अभ्यासी है, कोई ऐसा अनशन बातें करने वाला नहीं है। ऐसे हमने इस काल में यहाँ अब मनुष्य पर्याय प्राप्त की, क्या कहते हैं, देखो बात करने की पद्धति देखो, कि हमारा जीव ने इस काल में यहाँ इस क्षेत्र में अभी मनुष्य पर्याय की प्राप्ति की है। मूल में हम मनुष्य नहीं है, अभी एक हमारी अवस्था मनुष्य हुई है, उतनी बात है। हम मूल में मनुष्य नहीं है, हम तो आत्मा है, ज्ञान स्वरूपी आत्मा है हम तो। अभी मनुष्य पर्याय हुई है, इस क्षेत्र में आए हैं, ये संयोगिक बात है। इसमें हमारे पूर्व संस्कार से, वो भले होनहार से, जैन शास्त्रों के अभ्यास करने का उद्यम हुआ, क्या वो संस्कारी जीव थे। टोडरमल जी साहब खुद पूर्व संस्कार के जीव थे, वो अपने प्रकट किया है। उनके गुरु नहीं मिले उनको, उनको गुरु नहीं मिले, फिर भी ज्ञान हुआ था। कैसे हुआ, कि पूर्व संस्कार से हुआ, ये खुद इकरार करते हैं कि हमको इसमें हमारे पूर्व संस्कार से और हमारा भविष्य अच्छा होनहार है, हम निर्वाण पाने वाले हैं, मोक्ष में जाने वाले हैं, हमारा होनहार भी भला होने से जैन शास्त्रों का अभ्यास करने का उद्यम हुआ। तो क्या कहते हैं, कि जिसको जैन शास्त्र का अभ्यास करने का उद्यम रहता है, उसका होनहार कुछ ठीक है, क्या उसका होनहार कुछ ठीक है,
जिसकी होनहार अच्छी हो उसको मौका मिलता है।
हाँ, उसको ये ऐसा सुनने का मौका मिलता, क्योंकि विश्व में देखे तो ये बात कहीं पाई जाती नहीं है। घुमाओ फिर के आओ, सारा विश्व में घूमो, कहीं भी ये बात नहीं मिलती है।
जैन धर्म में जन्म लेते तो भी मिलती नहीं है।
हाँ, नहीं मिलती। जैन कुल में जन्म लेने वाले को भी ये बात पढ़ने सुनने में नहीं आती। जिसकी होनहार अच्छी है, जिसको आगे होकर के मोक्ष मार्ग प्राप्त होने वाला है, उनको ऐसा निमित्त मिलता है।
जिससे व्याकरण, न्याय, गणित आदि उपयोगी ग्रंथों का किंचित अभ्यास करके, देखो क्या है, टोडरमल जी व्याकरण जानते थे, न्याय ग्रंथों का अभ्यास किया था, गणित मैंने करणानुयोग का भी अभ्यास किया था, आदि उपयोगी ग्रंथों का, ये सब उपयोगी ग्रंथ लिया, तत्व ज्ञान करने में इसका उपयोग है, ऐसा उपयोग ग्रंथों का किंचित अभ्यास किया है, पूरा नहीं किया है, क्यों पूरा हो ही नहीं सकता, अभी पूरे ग्रंथ भी विद्यमान नहीं, 12 अंग विद्यमान नहीं है, तो जो भी उपलब्ध है उसमें से हमने किंचित अभ्यास किया अपनी योग्यता अनुसार। ऐसा अभ्यास करके टीका सहित समय सार, पंचाश टीकाए, प्रवचन सार, नियम सार, गोमट सार, लब्धि सार, त्रिलोक सार, तत्वार सूत्र इत्यादि, ये बड़े बड़े महान शास्त्र हैं, ऐसे शास्त्रों का, और क्षपणासार, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, अष्टपाहुड़, आत्मानुशासन आदि शास्त्र, और श्रावक मुनि के आचार आचार के प्ररूपक अनेक शास्त्र, और सुष्टु कथा सहित पुराणादि शास्त्र इत्यादि अनेक शास्त्र हैं, उनमें हमारे बुद्धि अनुसार अभ्यास वर्तता है, हमने अभ्यास किया है, और अब भी हमारा अभ्यास चालू है, अब भी हमारा शास्त्र अध्ययन छूटा नहीं है, चालू भी हम बड़े बड़े शास्त्र का अभ्यास किया है। ठीक है, सही
जो है बीज जो
इसमें कृपाल देव को नियम सार नहीं मिला, 200 साल पहले टोडरमल जी को नियम सार मिला है, क्योंकि दिगंबर संप्रदाय में उनका जन्म हुआ, और श्रीमद जी का जन्म वो संप्रदाय में नहीं हुआ, नियम सार नहीं मिला है, बहुत कम शास्त्र मिले उनको। करीब करीब है, करीब करीब आते हैं, और श्रावक मुनि के आचार के इत्यादि हमारी बुद्धि अनुसार अभ्यास वर्तता है, उसमें हमें भी किंचित सत्यार्थ पदों का ज्ञान हुआ है। क्या सत्यार्थ पदों का ज्ञान हुआ है, इसका मतलब क्या है कि उसका रहस्य हमने भी किंचित जाना है। सिर्फ हम शब्द का अर्थ जानते हैं उतनी बात नहीं है, सत्यार्थ लिया है तो उसका जो रहस्य है, सत्य रहस्य है, वो हमको भी कुछ मिला है।
क्या रहस्य है?
उस क्या है कि वो, हाँ वो अनुभव में आए ना, तो अनुभव कैसे होता है वो बात को, उनको ज्ञान हुआ है, आत्मज्ञान हुआ है। ऐसे सभी शास्त्र को पढ़ने वाले को या सभी विद्वानों को शास्त्र का अर्थ मालूम पड़ सकता है, लेकिन सभी को आत्मज्ञान हो जाए ऐसा नहीं होता। तो उनको तो सत्यार्थ पदों का ज्ञान हुआ है, इसका मतलब उसको आत्मज्ञान भी हुआ है। ये वो सात शास्त्रों में से कैसे हुए वो बात उन्होंने निकाली, वो बात अंतर्मुख होने की बात उन्होंने समझ में, अपनी समझ में आई और अपने प्रयोग करके वो अंतर में गए और उसका रहस्य समझ में आ गया। हाँ, गुरुदेव ने भी ये सभी शास्त्रों का अध्ययन किया है, आज भी गुरुदेव की लाइब्रेरी में ये सब शास्त्र विद्यमान सोनगढ़ में है, आज भी ये सब शास्त्र है। वो भी संस्कारी थे, वो भी कोई विद्वान नहीं थे, कोई बनारस नहीं गए थे, पढ़े लिखे उतने नहीं थे, लेकिन वो शास्त्र पढ़ते अंतर में से ज्ञान निकला, शास्त्र में से नहीं निकला, कहाँ से निकला, अंतर में से ज्ञान निकला, और उसको पढ़ने से पता चला कि क्या क्या कहा, क्या कहना चाहते हैं, कहाँ क्या कहना चाहते हैं। ये नियम सार की 15 गाथा देखो ना, पूजित पंचम भाव परिणति, कारण शुद्ध पर्याय, सारे दिगंबर संप्रदाय में त्यागी मुनि विद्वान कोई नहीं जानते कि यहाँ क्या पड़ा है, कैसा निकाला है परमार्थ। तो शास्त्र का ज्ञान होना एक बात है और पारमार्थिक ज्ञान होना दूसरी बात है। ज्ञानियों को पारमार्थिक ज्ञान होता है, विद्वानों को सिर्फ शास्त्र का अर्थ का ज्ञान होता है। परमार्थ ज्ञान होना वो दूसरी बात है। उसको यहाँ सत्यार्थ पद कहते हैं, परमार्थ ज्ञान को, जिससे आत्म कल्याण हो,
प्रयोजन सदे।
हाँ, आत्म कल्याण का प्रयोजन सदे। किंचित सत्यार्थ पदों का ज्ञान हुआ है हमको, ऐसा वो इकरार करते हैं। पुनश्च इस निकृष्ट समय में हम जैसे मंद बुद्धियों से भी हीन बुद्धि के धनी बहुत जन दिखाई देते हैं। क्या कहते हैं कि हम भी हमको मंद बुद्धि समझते हैं। हमारे से जो ज्यादा अधिक बुद्धि वाले थे उन्होंने तो बड़े बड़े शास्त्र बनाए, इससे तो हम हीन बुद्धि वाले हैं। आगे के काल में जो हुए हमारे से भी अधिक बुद्धि वाले हुए जिन्होंने महान शास्त्र की रचना की।
इतना बुद्धिमान थे, मंद बुद्धिमान के क्या मन
है? तो क्या है कि वो बराबरी करते हैं ऊपर वालों से, अपने से भी ज्यादा जिसकी बुद्धि है उनसे वो बराबरी करते हैं, तो अपने को मंद बुद्धिमान कहते हैं। पर अपना क्षोभ दूसरों से ज्यादा है तो भी उसमें उसका अहम भाव नहीं हो जाए, अभिमान नहीं हो जाए, उसका भी वो सावधानी रखते हैं। उसमें वो सावधानी रखते हैं, हम बहुत बुद्धिमान हैं, बहुत बुद्धिमान हैं, हम बहुत जानते हैं, ऐसा बुद्धिमान कभी कहते हैं नहीं। क्या बुद्धिमान होते हैं वो ऐसे नहीं कहते कि हम बहुत बुद्धिमान हैं। क्या वो अपनी प्रशंसा ऐसे नहीं करते, क्योंकि ऐसा अभिमान उनको होता ही नहीं ऐसा। और जो कम बुद्धिमान है वो दिखाएंगे कि हमने बहुत पढ़ा है, बहुत सुना है, हम बहुत जानते हैं, हमने बहुत किया है, ऐसा करके वो अपना प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकता। नहीं, वो क्या है कि सम्यक दर्शन में तो अहमपना आत्मा में होता है, वर्तमान पर्याय में उघाड़ में नहीं होता, तो उसको अभिमान आता नहीं। ये दूसरी बात है। सारे मिथ्या दृष्टि को अभिमान आए बिना नहीं रहता, पर सम्यक दृष्टि को अभिमान आता नहीं, बड़ा अंतर है वो। मिथ्या दर्शन छोड़ने का है तो सही ज्ञान करना, सही श्रद्धान करना, और अनुभव के लिए अनुभव पद्धति से प्रैक्टिस करना, कार्य करना, यही तो हमेशा चलता है। अपने यहाँ मिथ्या श्रद्धान कैसे छोड़ना, अज्ञान कैसे मिटाना, यही तो अपने हमेशा स्वाध्याय वही करते हैं अपन बहुत पहलुओं से। क्या 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 कहा कि पुनश्च इस निकृष्ट समय में हम जैसे मंद बुद्धियों से भी हीन बुद्धि के धारक बहुत जन दिखाई देते हैं। दूसरे लोगों के प्रति देखते हैं तो हमारे से भी कम बुद्धि वाले लोग हैं। उन्हें उन पदों का अर्थ ज्ञान हो, इस हेतु धर्मानुरागवश देश भाषा में ग्रंथ करने की हमें इच्छा हुई है। तो ऐसे जीवों को, हीन बुद्धि धारक जीवों को भी इन पदों का अर्थ ज्ञान हो, सत्यार्थ ज्ञान हो, ऐसा हमको भी धर्मानुराग हुआ है। क्या टोडरमल जी लिखते हैं कि हमको भी धर्मानुराग हुआ है, तो इसलिए देश भाषा मैंने, हमारे देश में जो भाषा चलती है, उस वक्त ढूंढारी भाषा चलती थी, राजस्थान में ढूंढारी भाषा चलती थी, उस देश भाषा में ग्रंथ रचने की हमें भी इच्छा हुई है। इसलिए हम यह ग्रंथ बना रहे हैं, इसी कारण से हम ये ग्रंथ बना रहे हैं। हमारा धर्मानुरागवश हम ग्रंथ बनाते हैं, दूसरा कोई कारण नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें ग्रंथ बना के कोई लेखक का अभिमान नहीं करना है, लेखक पने का अभिमान नहीं करना है, हमारी कोई प्रसिद्धि नहीं बढ़ानी है, हमारी आबरू कीर्ति मान बढ़ाना नहीं है, ऐसा कहा। सिर्फ हमारा धर्मानुराग है दूसरे जीवों को धर्म लाभ होवे, ऐसी एक भावना के कारण ये ग्रंथ रचना करते हैं, कोई हमारी पूजा प्रतिष्ठा के लिए नहीं करते हैं, ये बात इसमें आ जाती है।
प्रभावना करते हैं जो वो धर्मानुराग करते हैं, धर्मानुराग जो होती है वो करते हैं,
वो धर्मानुराग, हाँ धर्मानुराग वश ही करनी चाहिए, दूसरे कारण से करनी नहीं चाहिए, ये बात है। जुदू तत्वार सूत्र ने बीजू नाम मोक्ष शास्त्र छे, मोक्ष मार्ग प्रकाशक नहीं पण मोक्ष शास्त्र छे, एने कहेशे बीजा नाम थे, अने उमा स्वामी नामना आचार्य थया, आचार्य का आचार्य रचित छे, अने आ तो पोते तो गृहस्थी छे, पंडित जी साहब तो गृहस्थी छे, ए मुनि नथी, ए ग्रंथ रचना वाले मुनि वो तो महामुनि थे। इसमें भी अर्थ सहित उन्हीं पदों का प्रकाशन होता है जो बात बड़े बड़े ग्रंथों में है, आगमों में है, उन्हीं ग्रंथों का पदों का प्रकाशन हमने किया है। इतना तो विशेष है कि जिस प्रकार प्राकृत संस्कृत शास्त्रों में प्राकृत संस्कृत पद लिखे जाते हैं, उसी प्रकार यहाँ अपभ्रंश सहित अथवा यथार्थता सहित देश भाषा रूप पद लिखते हैं। भाषा बदली है वो की वो बात है, हमने कोई बात विषय बदला नहीं है, बात को नहीं बदल दी है, विषय को नहीं बदल दिया है, मूल चित्त तो वैसी की वैसी रखी है, जो संस्कृत प्राकृत भाषा में थी वो देश भाषा में बनाई है,
आम जनता को लाभ मिले।
हाँ, क्योंकि सब संस्कृत प्राकृत सब लोग जानते नहीं है इसलिए। परंतु अर्थ में व्यभिचार कुछ नहीं है, मैंने कोई फेरफार हमने नहीं किया, सिद्धांत नहीं बदला, सिद्धांत में तोड़फोड़ नहीं किया, सिद्धांत में हेरफेर नहीं किया, वो सब व्यभिचार है। इस प्रकार इन ग्रंथ पर्यंत उन सत्यार्थ पदों की परंपरा प्रवर्ती है, ये जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ है उसमें मूल आगम की परंपरा प्रवर्ती है।
नानी का प्रवचन हो उसमें कोई फेरफार करना नहीं
करना चाहिए, अपना अधिकार ही नहीं है, कैसे करें। हाँ, टोडरमल जी ने वो आमना ही रखी है कि आगे जो ज्ञानी हुए हैं मुनि हुए हैं उसी अनुसार मैं लिखता हूँ, मेरी बुद्धि से कोई फेरफार मैं करने वाला नहीं हूँ। उतना ही नहीं, उनको वो सही लगा है, क्या जो आगम उन्होंने पढ़े वो आगम के सत्यार्थ पदों का ज्ञान हुआ कि ये तो परम सत्य है, तो परम सत्य को वो परम सत्य के रूप में ही रखेंगे, उनको क्यों बदलेंगे। अपना आत्मा का अहित करना हो तो ऐसा बुद्धि होवे, वरना ऐसा होवे
नहीं।
यहाँ कोई पूछता है कि परंपरा तो हमने इस प्रकार जानी, आपने कहा ऐसा माना, आपने जो ग्रंथ में परंपरा रखी जानी मानी, परंतु इस परंपरा में सत्यार्थ पदों की ही रचना होती आई है और सत्यार्थ पद नहीं मिले, ऐसी प्रतीति हमें कैसे हो, आपकी गलती नहीं हुई होगी वैसा खात्री हमको कैसे हो। क्या प्रश्न उठाया खुद ने कि आप हमारे प्रति शंका कर सकते हो, क्या कहते हैं कि आपकी कोई भूल हो गई हो, आपको कोई समझ फर्क हो गई हो और फिर आप ग्रंथ बनाएंगे तो दूसरों को भी वो समझ फर्क हो जाएगी, तो ऐसा नहीं हुआ है इसका कोई आप सबूत देते हो, कोई खातरी करा सकते हो, प्रतीत करा सकते हो, ये प्रश्न खुद ने उठाया है, बात को स्पष्ट कर रहे हैं ना, इसलिए इसका समाधान कि असत्यार्थ पदों की रचना अति तीव्र कषाय हुए बिना नहीं बनती। क्या है, बुद्धि दोष कब होता है, मति दोष कब होता है, कि मति मलिन होती है तब, जिसका ज्ञान कषाय से रंजित होता है, मलिनता से रंजित हुआ हो, उसकी मति मैली हो जाती है, तो उनको ये फेरफार करने की बुद्धि आती है। ये बहुत बहुत भयंकर अपराध है, ये शास्त्रों में फेरफार करना ये बहुत भयंकर अपराध है, क्योंकि इसकी परंपरा चल जाती है। क्यों, कि जो फेरफार हो जाते हैं फिर इसकी ही परंपरा चल जाती है, और मूल परंपरा टूट जाती है, और बहुत से जो लोग हैं वो उस परंपरा के अनुसरण करने वाले जो हो जाते हैं, जिसको खबर ही नहीं है कि कब ये बात मूल से बदल करके ये नई बीच में आ गई है, वो पीछे वाले को तो भविष्य में पता ही नहीं चलेगा, इसलिए इसका अपराध बहुत बड़ा माना गया है। जी
है?
हाँ, ये तो मंदिरों ने सब एक केस है, शास्त्र में तो जी लोगों ने इतनी अपना जितनी समझ नहीं, पर मंदिरों में दिगंबर मंदिरों में जो विषपंथी मंदिरों थवा मिंडिया, विषपंथी में क्या होता है कि कुदेव को स्थापन करते हैं, कुदेव को स्थापन करते हैं, धर्णेन्द्र पद्मावती और दूसरे दूसरे अनेक प्रकार के देव देवी हैं, उनको स्थापित करते हैं, तो मूल आमनाएं हैं, वितराग देव के सिवा मंदिर में दूसरे देव को स्थापित करना नहीं चाहिए, लेकिन ये शासन के रक्षक है, ये सम्यक दृष्टि है, ऐसा ऐसे उनकी मान्यता बना करके उसकी स्थापना करते हैं, लेकिन सम्यक दृष्टि की भी स्थापना की जाती, मूर्ति के रूप में तो स्थापना नहीं की जाती, फिर भी वो लोग बल जोरी से जहाँ जिसका बल होता है तो लाठी मार करके स्थापना कर लेते हैं। बहुत जो मूल दिगंबर मंदिर थे वो ऐसे कुदेव देवियों के स्थापना वाले बन रहे हैं, हुए होने जा रहे हैं, सब बढ़ रहे हैं, क्योंकि उन लोगों की संख्या ज्यादा है, और ये काम तो संख्या बल से होता है, तो अपने यहाँ जो है इसमें कोई, अपने जो गुरुदेव की प्रेरणा से जो मंदिर बने हैं वहां ऐसे बुद्धि वाले लोग अभी आए नहीं, ये हुए भी नहीं, और ऐसी गड़बड़ी करने वाले अभी तक तो नहीं है, इसलिए ऐसा लगता है कि, और अपने यहाँ सिद्धांत की चुस्तता बहुत है, सिद्धांत की चुस्तता बहुत है, सिद्धांत में गड़बड़ी नहीं चलती अपने यहाँ, और सिद्धांत को पकड़ कर बैठते हैं अपने लोग, तो मानते हैं कि ये गांधी स्वामी वाले हैं, इनके मंदिर हैं, वो रह जाएंगे, बच जाएंगे, लेकिन दिगंबरों के मंदिर बचेंगे नहीं, क्योंकि उनके मुनि लोग जो है वो ज्यादा विषपंथी है, और समाज भी ज्यादा विषपंथी होने जा रहे हैं, क्योंकि उसमें मिलता है कि ये देव देवी है, मदद करता है, अपने को दुख मिटाते हैं और सुख को देते हैं, सुख दुख के भागे होते हैं, तो ये बात हो गई है, ये काल दोष है, ये काल दोष है। हाँ, पुष्प चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, चंदन लगाते हैं, ये दो काम करते हैं, पंचामृत भी से अभिषेक भी करते हैं, पंचामृत में घी आते हैं, शक्कर आता है, दूध आता है, चिकने पदार्थ आते हैं, जिसमें त्रस जीवों की उत्पत्ति हो जाती है, तो ऐसा कोई हिंसात्मक कार्य पद्धति जिन मंदिर में होनी नहीं चाहिए। आना भी नहीं चाहिए, ठीक बात है, ठीक बात है। कोई भी हिंसात्मक चीज मंदिर में हिंसा से बनी हुई है, चमड़ा है, सैंतर है, या खाद्य पदार्थ है, रसोई है, ये कुछ मंदिर में लाया नहीं जाता, खाया नहीं जाता, लाया नहीं जाता, सोया नहीं जाता, ये तो भगवान का समोसरण है। यहाँ शिष्ट है और शिष्टबद्ध रहना चाहिए। हाँ, उसका प्रयोग नहीं करते, सही बात है, ठीक बात है। बहुत वो बनते हैं ना, फूल में से बनता है, इसलिए आजकल तो फिर सिंथेटिक भी बनने लगा है, लेकिन जो फूल में से बनते हैं उसमें तो हिंसा बहुत है। हाँ, तमला चामड़ा ना हो, नहीं लाना चाहिए, ऐसे संगीत के साधन भी नहीं लाना चाहिए। भगवान की भक्ति तो भाव से करनी है या तबलों से करनी है, किससे करनी है? हाँ, भक्ति तो भाव से की जाती है, तबलों से नहीं होती। जितना भी बाह्य आचार भी सदाचार रूप में रहे, शुद्ध रहे, ये भी उसकी भी दरकार करनी चाहिए। जिसको परिपूर्ण शुद्ध होना है, वो दोष होने की एक बात का भी अभिप्राय में स्वीकार करने वाला नहीं है। ये सीधी साधी बात है, जिसको पूर्ण शुद्ध होना है, वो अशुद्धि हुए इस बात को अभिप्राय में क्यों हाँ भरे, क्यों सम्मत करे? वो सम्मत करने वाला, इसका दोष होता है, छोड़ो इसको, इससे दोष होता है, इसको भी छोड़ो, इससे दोष, जिससे भी दोष होता है उसको छोड़ो, बस सीधी बात है। हमें निर्दोष होना है, बात तो ये है उसमें। क्या कहते हैं कि असत्यार्थ पदों की रचना अति तीव्र कषाय हुए बिना नहीं बनती, क्योंकि जिस असत्य रचना से परंपरा अनेक जीवों का महाबुरा हो, क्या ऐसी रचना करने से अनेक जीवों का महाबुरा होता है, मैंने ग्रहित मिथ्यात हो जाता है और वो निगो तक चले जाते हैं, ऐसा बहुत बड़ा नुकसान होता है। वो आनंद घंजी ने वो बात किया है कि पाप नहीं जैसा असत्य भाषण करने जैसा कोई पाप नहीं है, उत्सूत्र भाषण सरीखो, पाप नहीं जैसा उत्सूत्र भाषण सरीखो। उच्च सूत्र मैंने अप सिद्धांत, सूत्र को सिद्धांत को विपरीत कर देना, बदल देना, इससे बड़ा पाप कोई जगत में नहीं है। मंदिर तोड़ने से भी ज्यादा पाप इसमें है, प्रतिमा को तोड़ने से भी ज्यादा पाप सिद्धांत तोड़ने में है, क्योंकि प्रतिमा तो पैसा होने से 25-50 हजार में दूसरे लगा सकते हैं, 25-50 हजार में सिद्धांत नहीं मिलते 25-50 हजार में सिद्धांत नहीं मिलते, सिद्धांत का कोई मिल नहीं, पैसों से नहीं होता, ऐसी बात है। तो मंदिर टूट गया, प्रतिमा टूट गई, तो कोई पैसा वाला हो तो कोई दूसरा करा लेगा, लेकिन सिद्धांत टूट जाएगा तो इसको स्थापन करने के लिए महाज्ञानी समर्थ पुरुष होंगे तो ये मूल परंपरा में लाएंगे, वरना तो ये दूसरा रास्ता पे सारी समाज चढ़ जाएगी और कईयों का बुरा हो जाएगा, इसलिए बहुत भयंकर है। क्योंकि जिस असत्य रचना से परंपरा अनेक जीवों का महाबुरा हो और स्वयं को ऐसी महाहिंसा के फल स्वरूप, देखो ये महाहिंसा बोला, क्या
महाहिंसा,
ये महाहिंसा बोला, ऐसा अनेक जीवों का बहुत दुर्गति हो जाने से उसको हिंसा बोल दिया, क्योंकि उसके दुख दुख हो जाएगा, हिंसा से दुख होता है, जिनको दुख हो जाएगा। इसके फल स्वरूप अनेक जीवों का ऐसा महाहिंसा के फल स्वरूप नरक निगोद में गमन करना पड़े, उसको दुर्गति हो जाएगी। ऐसा महाविपरीत कार्य तो क्रोध मान माया लोभ अत्यंत तीव्र होने पर ही होता है। चारों कसाई का तीव्र बोल दिया, अनंतानुबंधी और दर्शन मोहनी की बहुत तीव्र दशा हो जाने से ऐसा बुरा काम होता है। सामान्य मंद कसाई में ऐसा काम कभी होता नहीं है, ऐसा कहते हैं, किंतु जैन धर्म में तो ऐसा कसाईवान होता नहीं है। हम तो जैनी हैं, हम जो शास्त्र बना रहे हैं, हम तो जैन धर्म प्राप्त किया है, हमको तो तीव्र कसाई होने का संभव भी नहीं है। हमने तो अनंतानुमंदी और दर्शन मोहनी को तो उखाड़ करके फेंक दिया है, इसलिए हमको तो तीव्र कसाई होने की कोई संभावना नहीं है।